ओम शांति। ज्ञान सरोवर के इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है, जीवन का आधार, गीता का सार, भारत का सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र कहो या कर्म शास्त्र कहो, श्रीमद् भगवद् गीता को माना गया है। और इसमें एक ऐसी विधि भगवान ने बताई है जो वर्तमान समय में जीवन में उसकी वास्तविकता किस तरह से हम ला सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे ला सकते हैं, ये बात बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। श्रीमद् भगवद् गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा, क्योंकि ये एकमात्र शास्त्र है दुनिया के अंदर जिसमें भगवान उवाच फर्स्ट पर्सन में बताया गया है। दुनिया के बाकी सभी शास्त्र महात्माओं की वाणी है, परंतु ये भगवान के महावाक्य है, इसीलिए उसको शिरोमणि कहा गया। दूसरा, श्रीमद् भगवद् गीता को इसलिए भी महान कहा गया कि सभी वेदों का सार इसमें समाया हुआ है। इसमें जो भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई है वो अद्भुत है, और जो वर्तमान समय में लागू होती है उसमें ऐसा सुंदर ज्ञान है कि जो ज्ञान से व्यक्ति जीवन के महानता के शिखर को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद् गीता को हमेशा माता की उपमा दी गई है, क्योंकि जिस तरह हर बच्चे का संबंध मां के साथ होता ही है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध गीता माता के साथ है। कैसे? जिस महाभारत के अंदर युद्ध का वर्णन है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म पुस्तक में जिहाद के रूप में दर्शाया है। अच्छाई और बुराई के बीच में ही युद्ध है। उसी को ही बाइबल के अंदर होली वॉर के रूप में दर्शाया गया है जो फरिश्तों और शैतानों के बीच में है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूसता हुई कि कहीं ये युद्ध की बात लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे जैसे जैन धर्म के अंदर, तो उन्होंने जितेंद्रिय होने की बातें श्रीमद् भगवद् गीता से ली है। भगवान ने 5000 साल पहले कर्मेंद्रिय जीत होने की प्रेरणा, मन जीत होने की प्रेरणा अर्जुन को दी थी, और जैन माना ही जितेंद्रिय, ताकि कर्मेंद्रिय को अधिकार में रख सके और कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सके, तो वो प्रेरणा माता से ही ली गई है। ठीक इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, इसलिए उन्होंने कर्मयोग की बात धर्म पद में डाली है। कर्म ही धर्म है, या कर्म की गुह्य गति क्या होती है, इन बातों को स्पष्ट किया है। इसीलिए कहा कि हर धर्म के अंदर जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं उस मां से ही प्रेरित होकर के सबने अपनी पवित्र धर्म पुस्तकों में डाली है, इसीलिए गीता माता है। दूसरा, इसको माता इसलिए कहा गया है कि जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवद् गीता भी मनुष्य आत्माओं में अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का श्रेष्ठ तरीका बताते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने भी गीता को आत्मसात किया है वो महानता के शिखर पर पहुंचे हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे वो आइंस्टाइन ही क्यों ना हो या महात्मा गांधी क्यों ना हो। हर एक अगर संसार में अपने नाम को अमर कर गए तो वो तभी कर सके जब उन्होंने गीता को आत्मसात किया है, तब गीता की शिक्षाओं ने उन्हें इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त कराया है। इसीलिए कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता संसार में महान है, उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि यह मानवता का शास्त्र है, पूरी मानव जाति के लिए है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता को जितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है, उतना शायद ही किसी और पुस्तक को प्राप्त होगा। हर कोई गीता को समझना चाहते हैं, हर कोई जीवन में गीता को उतारना चाहते हैं, और इसीलिए उसको समझने के लिए ही ये इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई है। उसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो अतुलनीय है। उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु इस गीता के बैकग्राउंड को अगर हम देखें, थोड़ी सी भूमिका देखते हैं कि ये हम तक कैसे पहुंची, तो हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस महान धर्म ग्रंथ की रचना करने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे, और कई बार जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो उस वक्त उन्हें दिव्य अनुभव प्राप्त होते थे। इसी तरह कहा जाता है कि एक बार जब वो समाधि अवस्था में बैठे तो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगा, और ये दिव्य ज्ञान को सुन करके महर्षि वेद व्यास जी को ये महसूस होने लगा, इतना ऊंचा ज्ञान भगवान मुझे दे रहे हैं, परंतु ये मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊं। समाधि अवस्था से जब नीचे आकर के उसको लिपिबद्ध करना चाहा, तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज की कुछ बातें ऐसी होती है जो लुप्त हो जाती है, और इसीलिए वो लिपिबद्ध नहीं कर पाए। तब उन्होंने इस बात को तो समझा था कि ये कंटिन्यू होगा, ये ज्ञान इतना गुह्य है, तब वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई लेखक मिल जाए जो मेरी जो ये ज्ञान को लिपिबद्ध कर सके। तब उन्हें ये इशारा मिला, गणेश जी का आवाहन करो, और इसीलिए महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में वो गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट उन्होंने ये बात एडमिट किया है कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, परंतु उस ज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी मन की कल्पना का इस्तेमाल किया है। परंतु हार्डली को ये बात हमें बताते हैं कि ये महर्षि वेद व्यास जी ने जो एडमिट किया है महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक, 77th श्लोक। भाव ये है, इस श्लोक का भाव क्या है? श्लोक का भाव ये है कि जैसे आज मुझे किसी बच्चे को ज्ञान की कोई बात का उपदेश देना हो, मान लो सिंपल सा उद्देश्य कि बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उपदेश इतना ही है। लेकिन अगर रोज मैं सुबह उठ करके उसको ये उपदेश दूं तो शायद उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। परंतु मैं अपनी मन की कल्पनाओं से कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सच का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और फिर कैसे झूठ बोलने से व्यक्ति की हार होती है, सच बोलने से कैसे उसकी विजय होती है, इस बात को इस कहानी के माध्यम से जब स्पष्ट करती हूं तो शायद उसके मर्म को वो अच्छी तरह समझ सकता है। और जीवन में कभी ऐसा मौका आया कि जहां उसको ये चॉइस करना पड़े कि अब मैं क्या करूं, उस कहानी की स्मृति से वो शायद प्रेरित होकर के सच का प्रयोग करेगा, और जब उसका अनुभव करेगा और जीवन में सचमुच उसको ऐसे सुंदर अनुभव हुए तो शायद उसको वो अपने जीवन का आधार बना देगा। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बहुत सुंदर तरीके से जो एडमिट किया है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए, यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं। जो समाधि में मुझे ज्ञान मिला वो मैं प्रकट कर रहा हूं, लेकिन कैसे? तो जो मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है, इट इज द इमेजिनेशन ऑफ माई ओन माइंड, उसके माध्यम से मैं प्रकट कर रहा हूं। तो ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट किया है। अब जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि जिस काल में महर्षि वेद व्यास जी थे उस काल में और ऋषि मुनि भी तो होंगे। वो किसी भी ऋषि मुनि को इनवाइट करके, भाई मेरा राइटर बन जाओ आप, गणेश जी का आवाहन क्यों किया? भाई किसी भी ऋषि मुनि को बुला लेते थे लेखक बनने के लिए, गणेश जी का आवाहन करने के पीछे भाव क्या था? तो महर्षि वेद व्यास जी जब ट्रांसेंडेंटल स्टेज में थे तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज ये समाधि अवस्था यानी वेरी हाई कॉन्शियसनेस, जिसको कहा जाता है सुप्रा कॉन्शियसनेस, और उस सुप्रा कॉन्शियसनेस में जो बातें कहेंगे उसको समझने के लिए भी उस लेवल की कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति चाहिए। उससे कम लेवल के कॉन्शियसनेस वाला कोई होगा तो शायद उसके बात को मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर सकता है, और समाधि अवस्था में होने कारण वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया, क्योंकि गणेश जी को कहा ही जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता है। और इसीलिए बुद्धि के देवता माना उसकी भी इतनी सुप्रा कॉन्शियसनेस है जो उस मैसेज को समझने में शायद आसान हो जाए, ताकि कोई भी बात को वो मिस न करे। ये महर्षि वेद व्यास जी की चाहना थी कि मनुष्य तक फुल मैसेज जाना चाहिए। परंतु कहा जाता है कि जब गणेश जी आए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और महर्षि वेद व्यास जी की शर्त यह थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी वो शर्त को मान्य रख लिया, और कहा जाता है जब पहला ही श्लोक उच्चारण हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में। तो पहले ही श्लोक में गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये बात समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया। क्यों नहीं ये कहा सीधा कि भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, प्लीज टेल मी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उस बात को समझने के लिए गणेश जी को भी पहले ही श्लोक में रुकना पड़ा। और कहा जाता है कि आगे के श्लोक इतने सुंदर थे कि जब भक्ति योग की बात भगवान करते हैं तो इतने सुंदर भाव वाले श्लोक थे जिस भाव में स्वयं गणेश जी भी खो जाते थे, लिखना भूल जाते थे। और कुछ बातें इतनी गुह्य थी जिसको समझने के लिए भी गणेश जी को रुकना पड़ता था, माना अपनी शर्त को छोड़ना पड़ा। सोचने की बात है कि इतने सुप्रा कॉन्शियसनेस के दोनों आत्माएं थे, महर्षि वेद व्यास और गणेश जी, और इतनी सुप्रा कॉन्शियसनेस में लिखी गई बातें आज की दुनिया के जो ग्रॉस कॉन्शियसनेस में है वो उस कॉन्शियसनेस की बात को कितना समझ पाते होंगे। और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर गीता पर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत है कि जो उस भाव को समझ नहीं पाए, या कहीं कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी प्राप्त हुआ, उस भाव को भी जब समझ नहीं पाए तो उसके ऊपर टीकाएं भी लिख दी। शायद उस गहराई को समझने के लिए आज जरूरत है कि ताकि हम उस गहरी बात को अच्छी तरह समझ सके। मुझे याद आता है कि फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए, जिन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा, और जब गोले में देखा तो लिखने का प्रयास किया, लेकिन जब लिखा तो इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा और काव्य रूप में लिखा कि आज भी जब लोग पढ़ते हैं उस अलंकारिक भाषा को, उस कविताओं को समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद लोग कहते हाँ नॉस्ट्राडेमस ने लिखा था, पहले नहीं बता सकते कि उसने क्या लिखा था। विश्व का भविष्य तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है वो नहीं लिख पाए। लेकिन हमारे भारत में ऐसे महान ऋषि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य से 5000 साल पूर्व समाधि अवस्था में देखा था। और सिर्फ समाधि अवस्था में देखा नहीं, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है वो समाधान भी दिए हुए हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता इतनी महान है कि एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर के समाधान दिए हुए हैं। एक व्यक्ति की मनोदशा का समाधान, एक पारिवारिक स्थिति का समाधान, सामाजिक स्थिति का समाधान, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान और वैश्विक स्थिति का समाधान, एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर का समाधान दिया हुआ है। जिसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता में मिलेगा। कैसे? व्यक्ति की मनोदशा। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जब उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो जीवन कभी कभी असार महसूस होने लगता है, सारी हदें टूट जाती है, मनुष्य का विश्वास टूटने लगता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूटने लगती है। और कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। अर्जुन जैसा एक महायोद्धा, महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना को देखना आप, कितना सुंदर तरीके से आज से 5000 साल पहले आज के मनुष्य की मनस्थिति का बयान किया है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, जिसको आज की दुनिया की भाषा में कहे डिप्रेस्ड हो गया, नर्वस हो गया और अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। लेकिन उस समय जो उसका मोह जागृत हो रहा था, उस कारण उसकी यह दशा हो रही थी। जो वर्तमान समय मनुष्य के जीवन के अंदर हम बहुत स्पष्ट देखते हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है जहां हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है, जब वो भगवान को यही कहता है कि हे प्रभु, अपनी प्रार्थना में कि हे प्रभु, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, ये संघर्ष नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर। ये नहीं कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ये नहीं कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अर्जुन की तरह मोह का शिकार होता जा रहा है। और उस मोह के कारण वो शायद अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से मुड़ करके कायरता को अपनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कितना सुंदर 5000 साल पहले समाधि अवस्था में वर्तमान समय को देखा है। जहां हर मनुष्य की मनस्थिति यह है। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। उसके बाद पारिवारिक स्थिति, क्योंकि उस मनस्थिति का समाधान तो संपूर्ण गीता है ही है कि हर वक्त अर्जुन को किस तरह मोटिवेट करना है, भगवान ने उसको मोटिवेट किया। परंतु दूसरा स्तर पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर जो झगड़े चलते हैं, जितने भी झगड़े आपके सामने, तो हर रोज एक नया झगड़ा आएगा, जितने भी झगड़े चलते हैं उसका आधार क्या होता है? जमीन और जायदाद। झगड़े किस पर होते? परिवार में, भाई भाई के बीच में जमीन और जायदाद को लेकर के तो झगड़े होते हैं। पांडव कौरव भी भाई भाई थे, एक ही परिवार के, और पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। आज की दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई भाई के बीच में भावार्थ, वो अपने मन में उन्हें स्थान देना नहीं चाहता है, उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहता है, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। कितने परिवार आज नष्ट हो रहे हैं इस तरह से, बदले की आग में, इस तरह के प्रतिशोध की भावना में। 5000 साल पहले आज के पारिवारिक स्थिति को उन्होंने समाधि अवस्था में देखा था, और उसका समाधान भी गीता है। कितना सुंदर तरीके से मन की कल्पनाओं से उस महाभारत में उन्होंने ये बात दर्शाई है। ठीक इसी तरह सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? है, है? बहुत है, बहुत है। महाभारत में तो महर्षि वेद व्यास जी ने एक शकुनी को दर्शाया, लेकिन आज शायद हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा है जो घर घर में आग लगा रहा है। और उस वक्त समाज भी ज्ञान चक्षु विहीन, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं, और उस कारण भी समाज के अंदर कैसी कैसी परिस्थितियां क्रिएट होती है, वो सामाजिक स्थिति का संपूर्ण दृश्य और उसका समाधान भी गीता है। आज से 5000 साल पहले ये बात को देखी थी उन्होंने। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने जो नामों का चयन किया है ना, बहुत एप्ट है, बहुत परफेक्ट है। यही बताता है कि वर्तमान समय में ऐसे समाज में कैरेक्टर्स बहुत भरे पड़े हैं। इसी तरह धृतराष्ट्र, राष्ट्र की स्थिति कैसी होती है? खाली भारत की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी राष्ट्र ले लो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी राष्ट्र ले लो, हर राष्ट्र का झगड़ा किस पर है? कुर्सी का ही तो खेल है सारा। तो महाभारत के अंदर भी क्या दिखाया, कुर्सी का ही खेल था ना, कुर्सी का ही खेल था। और जब उस कुर्सी को द्रुत भावना हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, तो उस राष्ट्र का भी क्या हाल, क्या दशा होने लगती है, हर कोई ये जानता है। इसलिए कहा कि कोई भी राष्ट्र ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे कोई भी राष्ट्र दुनिया का ले लो, हर राष्ट्र को आज द्रुत भावना हड़प करने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात 5000 साल पहले देखी थी और उसका समाधान, तभी तो महात्मा गांधी कई बार अपने किताब में लिखते हैं कि जब मैं राष्ट्र की बातों को लेकर उलझन महसूस करता हूं, उस समय गीता का कोई भी पन्ना खोल करके जब पढ़ना आरंभ करता हूं तो मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता था। और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कितना एक्यूरेटली इस बात को भी दर्शाया है, उसका समाधान भी गीता है। और वैश्विक स्थिति, आज विश्व के अंदर क्या चल रहा है, आज संसार एक संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को भी संसार में आना ही पड़ता है। इसके इतिहास को एक नया मोड़ देने के लिए वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योगयुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। योग ही एकमात्र वो समाधान है जो हर स्तर की समस्या को संबोधित कर सकता है, उसको सुलझा सकता है। परंतु आज योग योगा हो गया और योगा खाली फिजिकल लेवल तक पहुंच गया, आसन और प्राणायाम तक, लेकिन गीता का हर अध्याय योग है। और भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी आसन या प्राणायाम नहीं सिखाया है। इसका मतलब योग का कुछ और भाव भी है और वो एक स्पिरिचुअल सेंस में लिया गया है। और वो योग जब स्पिरिचुअल स्तर पर आ जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, तब हर समस्या का समाधान करने के लिए वो सक्षम हो जाता है। इसलिए आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी को जो ज्ञान समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, वो किस तरह से एड्रेस करता है हर परिस्थिति को, हर समस्या को, हर मानसिक स्थिति को, उसी का नाम है गीता, भगवान का गाया हुआ मधुर गीत। चलते हैं एक बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी वर्तमान समय के मनुष्य को कुछ समझाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जो अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण किया कुछ समझाने के लिए, और उस कहानी के अंदर कुरु परिवार एक दृश्य है, जो दृश्य को आप अगर सामने ले आएंगे, कुरु परिवार है जहां पांडव और कौरव दोनों है। कुरु का मतलब है करना, कर्म करना। पांडव माना जो पवित्र कर्म करने वाले, जो भगवान से प्रीत रखने वाले, धर्म पक्ष के वाचक है। और कौरव माना जो अपवित्र कर्म करने वाले, अधर्म पक्ष के वाचक, भगवान से विपरीत बुद्धि। और इस तरह से एक दृश्य हमारे सामने है कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान के पास जाते हैं। भगवान को कहा गया है, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कृष्ण। कृष्ण का शाब्दिक मतलब है सबसे आकर्षणमय मूरत, सबसे आकर्षणमय मूरत। और अगर ये शास्त्र पूरी मानव जाति के लिए है तो सबसे आकर्षणमय मूरत कोई देहधारी की नहीं है, लेकिन दिव्य स्वरूप परमात्मा की है। लेकिन परमात्मा को किस तरह से दर्शाया जाए, इसलिए श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। नहीं तो सारी भगवद गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है, भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच नहीं कहा गया है, लेकिन यहां महर्षि वेद व्यास जी कुछ मर्म समझाना चाहते हैं हमें। जब दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए तो कहा जाता है कि दुर्योधन सिरहाने बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। जब भगवान आंखें खोलते हैं, सामने अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम कब आया? दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है, जिसकी लाठी उसका भैंस, चाहे वो जिस भी तरीके से हासिल करे। तो इसी तरह बहुत एक्यूरेटली दर्शाया हुआ है आज की मनुष्य की मनस्थिति को, और इसीलिए भगवान ने कहा, ठीक है तुम मांग लो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? फिर एक वाक्य भगवान ने वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बन के रथ चलाऊंगा। दुर्योधन को शकुनी ने सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना। लेकिन जब ये वाक्य भगवान ने जोड़ा, तब दुर्योधन ने सोचा कि जब भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं है, शस्त्र उठाने वाले ही नहीं है, तो मांग कर फायदा ही क्या, इसे तो अक्षौणी की सेना ही नहीं ले लूं मैं। तो उसने अक्षौणी की सेना मांग ली और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितना सुंदर भाव यहां है कि दुनिया के अंदर आज भले अक्षौणी एक तरफ हो जाए, परंतु जिसके जीवन के अंदर निर्माणता है, पैरों के पास खड़ा रहना नम्रता का प्रतीक और सिरहाने बैठना अहंकार का प्रतीक, तो भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए जिसकी बुद्धि धर्म युक्त है, नम्रता जिसके अंदर है, उसके सामने भले अक्षौणी एक हो जाए, लेकिन वो भगवान की शक्ति को अच्छी तरह से पहचानते हुए उसको अपना साथी बना लेता है कि भगवान भले युद्ध न भी करे तो भी वो गाइडेंस ऐसा दे सकते हैं जो विजयी बना सकते हैं। भगवान किसके तरफ होता है? जिसने भगवान से प्रीत करना सीखा उसी के तरफ भगवान भी होते हैं, चाहे अक्षौणी एक तरफ हो जाए, लेकिन भगवान जिसके तरफ है विजय उसी के निश्चित है, विजय उसी के निश्चित है। बाकी कोई अहंकार में कितना भी उछले, अक्षौणी अपने तरफ कर ले, लेकिन फिर भी उसकी हार निश्चित है। जब मैं अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि दुर्योधन ने जब अक्षौणी की सेना मांग ली, अक्षौणी की सेना थी किसकी? अक्षौणी की सेना थी किसकी? नारायणी सेना थी ना। अब जिस नारायण ने उस सेना को पाल पोस करके अगर उसकी परवरिश की हो, अगर भगवान दे भी दे दुर्योधन को, लेकिन भगवान अगर सामने रथ पर खड़े हो जाए, तो क्या वो अक्षौणी सैनिकों की हिम्मत होगी अपने मालिक के तरफ शस्त्र उठाने की? हिम्मत तो हो ही नहीं सकती है। तो दुर्योधन तो उसी डिसीशन में हार गया, उसी डिसीशन लेकर के हार गया, ना भगवान मिला ना वो अक्षौणी की सेना उसके तरफ रह सकी। कहने का भावार्थ कि क्या दुर्योधन को इतना भी नहीं सूझा कि अक्षौणी की सेना लेने के बाद भी वो उसके सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, तो मेरी हार तो वैसे ही निश्चित है। लेकिन अहंकार कभी भी व्यक्ति को सही समझ या सूझ प्रदान नहीं करता है। अहंकार में व्यक्ति हमेशा गलत डिसीशन ले लेता है। इसीलिए सही डिसीशन लेने के लिए जितना नम्रता है, ईश्वर को अपना साथी बनाया है, तो कहा जाता विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, उसका विनाश निश्चित है। महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय के कैरेक्टर्स को देखते हुए आज से 5000 साल पूर्व ये बात लोगों को समझाना चाहा कि अति धर्म ग्लानी के समय भी साथ किसका लेना है। भगवान का साथ लेकर के तो देखो हर संघर्ष में विजय निश्चित है, ये भगवान ने समझाना चाहा था। उसके बाद 5 पांडव और 100 कौरव, परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना। आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने परसेंटेज में होंगे? ओनली 5%, इतने भी नहीं होंगे। सही बात है, लेकिन फिर भी महर्षि वेद व्यास जी ने कितना कम परसेंटेज बताया है, ओनली 5%। वो 5% पांडव जो धर्म पक्ष के वाचक दैवी प्रवृत्ति वाले, उसमें युधिष्ठिर यानी युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया में जहां लोगों का वेवरिंग माइंड्स है, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, शक्तिशाली आत्मा, आत्मशक्ति से युक्त, आत्मबल से युक्त, कोई भी बात उसके सामने आ जाए उखाड़ के फेंक देने वाला। आज की दुनिया के अंदर स्ट्रांग विल पावर, जहां लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, अर्जन करने वाला, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला, पॉजिटिविटी को अपनाने वाला, भगवान ने जो कहा जी हां करके अपना लेने वाला, हर श्रीमत को अपना लेने वाला। आज की दुनिया में जहां चारों ओर नेगेटिविटी का इतना प्रभाव हो, ऐसी दुनिया में पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। और आज जहां लोगों के जीवन में कोई नियम सिद्धांत है ही नहीं, ऐसी दुनिया में सिद्धांतों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और पांचवा नंबर था सहदेव, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या सबके बीच में मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन सहदेव ऐसा था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला, तो आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली वन परसेंट. ये थे पांच पांडव. आप सभी कौन हो? पांडव ही हो, है ना? पांडव तो है तभी यहां बैठे हैं, क्योंकि गीता ज्ञान तो पांडवों के लिए ही होता है. कौरवों के लिए गीता ज्ञान नहीं होता है, है ना? लेकिन कौन सा पांडव है जो समझते हैं कि हम स्थिर बुद्धि पुरुष है? युधिष्ठिर. जरा हाथ तो खड़ा करो युधिष्ठिर. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. अच्छा, जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर. जरा हाथ खड़ा करो भीम. स्ट्रांग विल पावर, वेरी गुड. जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड. जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, अच्छा. और जो समझते हम सहदेव है, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले हैं, बहुत अच्छा. लेकिन यहां मुझे छह प्रकार के लोग दिखाई दिए हैं. जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है फिर? वो कौन है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कौरव तो यहां आ नहीं सकते हैं, गीता ज्ञान सुन नहीं सकते हैं. अगर यहां तक पहुंच भी गए होंगे तो बाहर घूमने निकल गए होंगे, गीता ज्ञान थोड़ी सुन सकते हैं, है ना? लेकिन आज इस मंच से जो मैं देख रही हूं कि यहां बैठा हुआ हर कोई मुझे अर्जुन नजर आ रहा है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं. तो ऐसे अर्जुनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक. पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, है ना? तो इसीलिए कहा ये थे पांच पांडव. और दूसरी ओर सौ कौरव. सौ कौरव यानी जो अधर्म पक्ष के वाचक. धृतराष्ट्र यानी जो राज सत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान में अंधा था, नेत्रहीन हो गया था. और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध ली. जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि आज अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? सहारा. विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए. ये गांधारी कैसी पत्नी थी जिसने खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली? लेकिन तब मुझे महसूस हुआ, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार तो देखो कितना सुंदर दर्शाया है, कि आज अगर कोई पति किसी कारणवश किसी के साथ अन्याय करता हो, अधर्म का आचरण करता हो, तो उसकी पत्नी जानते हुए समझते हुए भी कुछ नहीं कहती है. उस समय खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है. और अगर कोई सुनाने भी जाता है या उसको बताने जाता है कि भाई आप अपने पति को थोड़ा तो समझाओ, इतना तो अन्याय न करें हमारे साथ, तो जानते हुए समझते हुए भी क्या कहती है? क्या कहती है? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा किया आपने बताया, ठीक है हम देखेंगे, हम बताएंगे. तो ये गांधारी नहीं तो कौन है? गांधारी नहीं तो कौन है? इस दुनिया में ऐसी कई गांधारियां हैं और इसीलिए तो ये दुनिया की हालत ऐसी होती जा रही है. और फिर मैं जब इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, सौ कौरवों के नामों की लिस्ट मेरे सामने आ गई. बहुत आश्चर्य लगा मुझे, क्योंकि आज कलयुग में भी मां बाप अपने बच्चों के नाम इतने सुंदर सुंदर रखते हैं. तो मैं सोच में पड़ गई कि अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहे हैं, तो कौन मां बाप ऐसे होंगे जो दू से नाम रखते हैं। दू यानी दुष्टता का भाव, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं, बुराई का प्रतीक। तो कोई मां बाप अपने बच्चों के नाम दू से नहीं रखते आज की दुनिया में। दू से मेरे मन में एक ही नाम ख्याल में आता है, दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। लेकिन ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे मां बाप थे जिन्होंने अधिकतर अपने बच्चों के नाम दू से रखे। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है जो उसने एडमिट किया है, और इसीलिए आज भले उस नाम से वो लोग न हो लेकिन कैरेक्टर से तो है। हर इंद्रिय दुष्टता का भाव लिए हुए दुर्योधन, यानी जो धन का दुरुपयोग करने वाले आज के समाज के अंदर ऐसे बच्चे हैं या नहीं है? हैं ऐसे बच्चे? बहुत है, जो धन का दुरुपयोग करना जानते हैं। दुशासन, ऐसे लोग भी आज के समाज के अंदर है या नहीं है? दुशासन करने वाले, दुस्सह, दुश्शल, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रिया दुष्टता लिए हुए। दुर्विमोचन, जो हमेशा बुरी बातें देखने के शौकीन है। दुष्कर्ण, जो हमेशा बुरी बातें सुनने के शौकीन है। दुर्मुख, जो बुरी बातें बोलने के शौकीन है, दूसरों की निंदा, ग्लानी वाली बातें सुनाने के शौकीन है। दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही दुष्टता वाली है। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुशीला। शील माना चरित्र, दुशीला, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला। मुझे कई माताएं बहनें आती है जब यहां पर तो सुनाती है, हमारे पास तो समय नहीं होता है कि हम सब बातें टीवी में देख सके, लेकिन आजकल की सीरियल के बारे में सुना रहे थे मुझे कुछ माताएं कि बहन जी आजकल सीरियल में ऐसा चलता है, ऐसा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो कहा घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, है ना। और उसमें जो नारियों की भूमिका दिखाई है हर सीरियल में, हाँ, सारी दुशीलाएं हैं। कहने का भाव आज के सचमुच आज समाज में भी ऐसा हो रहा होगा, तभी तो सीरियल वालों ने भी दिखाया। तो दुशीलाएं भी अनेक हैं आज। तो इसीलिए कहा कि 100 कौरव और 5 पांडव, कितना सुंदर महर्षि वेदव्यास जी ने वर्तमान समय को 5000 साल पहले समाधि अवस्था में देखा और मन की कल्पना से कितनी सुंदर एक कथा का निर्माण किया। उसके बाद गीता का जन्म कहां हुआ? तो कहा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है और युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में सैनिकों के हृदय विदीर्ण होने लगे हैं। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई थी, तो कार्यक्रम के बाद वहां के कुछ भाई बहनों ने मुझे कहा कि आपको यहां के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं। मैंने कहा चलिए, फ्री थे हम। तो रास्ते में जाते जाते वो भाई कुरुक्षेत्र की कहानी सुनाने लगे और मुझे कहने लगे कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था, तो मैंने पूछा क्या था, तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था, बहुत छोटा सा कस्बा था जहां एक शिवजी का मंदिर था और उस शिवजी के मंदिर से उस कस्बे को जाना जाता था, इसलिए स्थानेश्वर जो थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंने उसको पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे और उन्हें महसूस हुआ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध यहां हुआ, भगवान साक्षात यहां आए और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो 1947 में उन्होंने कुरुक्षेत्र नाम डाला, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम चेंज किया। आज भी अगर आप जाएंगे कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर तो एक तरफ कुरुक्षेत्र जंक्शन मिलेगा तो दूसरी ओर थानेसर ही मिलेगा लिखा हुआ। तो इसीलिए जब ये बात उन्होंने सुनाई, मैंने इंटरनेट में उसको चेक किया कि कितना सत्य है, और सचमुच 1947 में एक कलेक्टर आया जिसको ये महसूस हुआ कि भाई इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ और उसका नामो निशान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने नाम चेंज किया और फिर उस स्थान को डेवलप करने के लिए कई स्थान ऐसे बनाए ऐतिहासिक, उन्होंने अपनी मन की कल्पना उसे बनाए और धीरे धीरे उसको डेवलप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। बहुत आश्चर्य की बात, जहां साक्षात भगवान आए हो, अक्षौणी सेना के बीच में इतना युद्ध हुआ हो, आज पानीपत का युद्ध इतिहास में आता है, लेकिन कुरुक्षेत्र का नामो निशान 1947 तक भारत के नक्शे पर नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद उस मुझे लेके चला ज्योति सर। ज्योति सर वो स्थान है जो एक्चुअल युद्ध का मैदान दिखाया हुआ है। वो मैदान देखो इतना छोटा है, जहां अक्षौणी की सेना कैसे खड़ी होगी ये समझ में तो नहीं आता है, मेरी कल्पना शक्ति से बाहर की बात है। फिर मुझे उसने वो मॉन्यूमेंट दिखाया जहां एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है कि भई रथ है और उस रथ पर अर्जुन भाई लेकर के चला कि मेरा रथ बीच में ले आओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और फिर वहां भगवान उसको गीता ज्ञान दे रहे हैं, वो मॉन्यूमेंट है। कहा ये वो स्थान है जहां एक्चुअल गीता ज्ञान दिया गया था। अब सोचने की बात यह है कि या तो महाभारत की कंट्रोवर्सी है या ये स्थान की कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भई ये मेरे मन की कल्पना का विस्तार है तो फिर ये स्थान तो नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, जब वो मुझे कह रहा था कि यहां वो गीता ज्ञान दिया गया तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई एक बात बताओ कि 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना वक्त लगा होगा, दुर्योधन को अर्जुन को ये ज्ञान सुनाने में कितना वक्त लगा होगा। तो उस भाई ने मुझे कहा शास्त्रों के हिसाब से 3.5 घंटे दिखाए हुए हैं कि 3.5 घंटे लगे भगवान को ये ज्ञान सुनाने में। और पहले अध्याय में ये बात आती है शंख नाद हो चुका, हर एक महारथी ने अपने अपने शंख बजा दिए और उसके बाद भगवान उसको गीता ज्ञान सुना रहा है 3.5 घंटे। तो मैंने उस भाई से पूछा एक बात ये बताओ कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया, जो इतना इंपेशेंट था, युद्ध करने के लिए उतावला था, क्या उसमें 3.5 घंटे का पेशेंस होगा, विवेक क्या कहता है? हाँ, उसने मुझे कहा उस वक्त भगवान ने हिप्नोटाइज कर दिया था सबको या इसके बारे में शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है। खैर जो भी हो, फिर मेरे को मन में आया कि गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी। सोचने की बात यह है कि गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको होती है भाई। हाँ, जो धर्म के मार्ग पर ही चल रहा है उसको गीता ज्ञान की क्या आवश्यकता है। वो तो अच्छाई के मार्ग पर ही चल रहा था। जो बुराई वाला होता है, मां बाप भी किसको एडवाइस करते हैं, अच्छे वाले को करते हैं या जो गलत कर रहा है उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। विवेक ये कहता है। तो दुर्योधन को गीता ज्ञान की आवश्यकता ज्यादा थी अर्जुन से, तो फिर भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया, दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाया। बात यह थी कि दुर्योधन को पहले ही भगवान समझाने गए थे, समझाने पहले दुर्योधन को ही गए थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन ने कहा धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे धर्म की बातें आप सिखाओ, क्योंकि मैं सब कुछ जानता ही हूं। अधर्म किसको कहते हैं वो भी मैं जानता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म को जानते हुए उस मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, और अधर्म को जानते हुए मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं। ये मेरा प्रॉब्लम है। इसीलिए जब अर्जुन निराश होने लगा तो भगवान उसको ज्ञान सुनाने लगे। लेकिन क्या युद्ध का मैदान वो सही स्थान और समय था? आज अगर रास्ते पर कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हो और आप वहां से गुजर रहे हो और एक व्यक्ति आपको सज्जन दिखाई दे और आप उसको कहो मैं गीता ज्ञान सुनाता हूं तुझे, तो वो दूसरा क्या कहेगा? गुस्सा करके लड़ाई करने आपके साथ आ जाएंगे। दिस इज नॉट द प्लेस, गीता ज्ञान सुनाना है तो घर में जाके सुनाओ, दिस इज नॉट द प्लेस, यहां हमें लड़ने दो, कहेगा कि नहीं? ठीक इसी तरह भगवान ने जब गीता ज्ञान सुनाना चालू किया तो दुर्योधन का कोई रिएक्शन नहीं। ही शुड हैव कम फॉरवर्ड, वहां पर पहुंच करके भगवान को कहता था गीता ज्ञान देना था तो इतना दिन क्या किया, अर्जुन को सुना देता था। This is not the place, अब युद्ध का आरंभ हो रहा है, शंखनाद बज उठा है। This is not the place, ये समय नहीं है, वो स्थान नहीं है। और क्या भगवान हिंसक युद्ध कराएं, क्या इतनी ही शक्ति थी भगवान की? आज गीता ज्ञान को पढ़ करके महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर भारत को स्वराज्य दिला सकते हैं, तो क्या भगवान के पास वो शक्ति नहीं थी कि वो हिंसक युद्ध ही कराए? जब गीता में स्वयं लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो भगवान हिंसा का आचरण कराने के लिए प्रेरित कैसे कर सकता है? अहिंसा परमो धर्म क्या भगवान के लिए नहीं था? यह उपदेश खाली अर्जुन के लिए था? तो फिर भगवान ने उसका आचरण करके हिंसा का युद्ध, अहिंसक युद्ध क्यों नहीं करवाया? सेटलमेंट करने की शक्ति भगवान के पास नहीं थी? आज आपके सामने कोई केस आता है, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स का केसेस भी आता है, तो भी आप कितना वक्त देते हो सुलझाने के लिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए? क्या आप कहेंगे चलो छोड़ दो आज से, कहेंगे ऐसा? तो भगवान समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे? इतनी शक्ति भगवान के पास नहीं थी? सोचने की बात है ना? और फिर जब ये बात कही तो कहा अक्षौणी सैनिक यहां थे, तो मेरे मन में विचार आया कि अक्षौणी माना कितने, तो 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ और 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। तो मैं इंटरनेट में उसका सर्च करने लगी कि एक अक्षौणी में कितना होता है, तो ये बताया इंटरनेट में कि महाभारत के संगठन के समय पत्ती का इकाई निश्चित किया गया, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतने एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितना, तो उसमें दिखाया कि एक अक्षौणी के अंदर 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 109,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में थे। तो 18 अक्षौणी में कितने थे, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 18 से, तो 18 अक्षौणी के अंदर 393,660 रथ थे, 393,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे और वो मैदान इतना छोटा कि 393,000 हाथी कितनी स्पेस चाहिए, इतने रथ, 11,00,000 घोड़े। और क्या आज से 5,000 साल पहले इतनी पॉपुलेशन खाली कुरुक्षेत्र में हो? और इतना ही नहीं, अगर रथ पर एक सारथी रथ चलाने वाला और एक योद्धा तो 2 हो गए, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला एक योद्धा 2 है। तो इस फिगर को अगर डबल किया जाए तो रथ पर 787,320 रथ पर थे, हाथियों पर 787,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और घोड़ों पर 11,80,980 विच अमाउंट्स टू 47,23,920। और वो मैदान इतना छोटा, हरियाणा अगर पूरा लिया जाए तो भी कम पड़े। और इतना ही नहीं, जो लोगों के तीर खत्म हो जाते थे तो वो तीर का सप्लाई करने वाले कितने लोग होंगे उसकी तो कोई गिनती नहीं है। और कहा जाता है कि जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध विराम हो जाता था, फिर सब अपने अपने शिविरों में चले जाते थे, तो माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। तो हरियाणा तो छोटा पड़ेगा ही। इतना ही नहीं, लेकिन सब रात को मिलकर के साथ में भोजन करते थे। अब 47,00,000 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? उस सारी पॉपुलेशन को गिनती किया जाए। और कहा जाता कि भीष्म पितामह एक दिन में 10,000 सैनिकों को वो अकेले ही मारते थे। 10,000 को एक व्यक्ति अकेला ही मार देता था। माना ये सारा पॉपुलेशन और इतने सारी डेड बॉडीज, वहां युद्ध कैसे होगा? इसलिए कहा मेरी कल्पना की शक्ति से हिंसक युद्ध तो बाहर ही हो जाता है ना? लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। तो इसमें क्या कल्पना है? तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसीलिए कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी, हरियाणा की कथा भी नहीं लिखी, महाभारत की कथा। उस समय पूरे भारत का पॉपुलेशन जो उन्होंने देखा, आज का समय जो भारत का पॉपुलेशन था वो है ना 1 अरब के ऊपर। तो आज हर व्यक्ति जीवन में एक संघर्ष से गुजर रहा है। तो ये अहिंसक युद्ध, और तभी व्यक्ति को गाइडेंस की जरूरत होती है जब व्यक्ति नर्वस और डिप्रेस्ड हो जाए, जीवन का संघर्ष करते करते थक जाए, उसी समय उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। ये बात कुछ बुद्धि के अंदर बैठती है। तो इसीलिए 5000 साल पहले जब महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि अवस्था में यह दृश्य देखा था तो ये महाभारत की कथा, महाभारत की कथा। और उस समय जो महाभारत उसने देखा वो अफगानिस्तान से लेकर के फार ईस्ट तक का महाभारत। और आज ये महाभारत में कितना संघर्ष चल रहा है, कितना संघर्ष चल रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं तो क्या महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, आप क्या कहना चाहते? अरे कौन कहता है नहीं हुआ, आज हर देश की सीमाओं के बीच में क्या चल रहा है, हर मनुष्य जीवन के अंदर क्या चल रहा है। और महाभारत के अंतिम पर्व में यही बात तो लिखी है महर्षि वेदव्यास जी ने कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या चल रहा है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? हाँ महाभारत चलता, तो कौन कहता है महाभारत नहीं हुआ था, हो रहा है ना। अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक क्या चल रहा है, चाहे मनस्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीय स्थिति और वैश्विक स्थिति क्या चल रहा है, महाभारत ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र की कथा नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है, एक कुरुक्षेत्र तो हमारे भीतर है, वो कुरुक्षेत्र तो आज भी है, लेकिन इसीलिए शायद 1947 तक उसका डिस्क्रिप्शन कहां भी नहीं था। क्यों नहीं था? अगर वहां इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ हो तो उसका वर्णन क्यों नहीं था, वो भारत के नक्शे पर क्यों नहीं था? क्योंकि ये उस कुरुक्षेत्र की बात ही नहीं है। हर मनुष्य के मन में एक कुरुक्षेत्र है, हर एक का जीवन एक कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हर जीवन के अंदर, हर चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। इसीलिए ये वर्तमान समय की पूरी परिस्थिति दर्शाई गई है। और महर्षि वेदव्यास जी ने जो गीता ज्ञान दिया ये हम सब एक एक भारतवासी के लिए है। इसीलिए 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, जिसमें पहले अध्याय में मानव की समस्याओं को दर्शाया है कि जिस तरह की परिस्थिति से एक मानव गुजरता है। दूसरे अध्याय से मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं, तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक उसका डिटेल, उसका विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में उसका सारांश दिया हुआ है। इस तरह पूरी गीता हम सबके लिए है, हर एक मनुष्य के जीवन के संघर्ष के लिए है। और इस तरह भगवान जो गीता ज्ञान दे रहे हैं वो हर एक के लिए है, क्योंकि हमारा ही संवाद ईश्वर के साथ निरंतर चलता है। संघर्ष के समय हर व्यक्ति अपनी प्रार्थना में कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को सुना नहीं सकते हैं, और उस वक्त मनुष्य प्रार्थना में ही भगवान के साथ उस बातों को शेयर करते हैं। तो ये मनुष्य का संवाद ईश्वर के साथ, क्योंकि उसने अपनी कर्मों की सृष्टि को इतना दूषित कर दिया है कि उस कर्म की सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए पहले तो वो ये निश्चय कर ले कि उसको कहां जाना है, उसका लक्षित बिंदु क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो जीवन कर्म की सृष्टि, ये हर मनुष्य की कर्म की सृष्टि बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि मनुष्य जीवन के कर्म इतने दूषित है। इसीलिए भगवान उसी कर्मों की सृष्टि को ठीक करने के लिए गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तभी भगवान ने दुर्योधन से कहा कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, भगवान हमारे लिए युद्ध नहीं करेगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा। और जो भगवान को अपने जीवन में सारथी बना लेता है वो हर युद्ध विजयी में परिवर्तित हो जाता है, हर जीवन का संघर्ष विजयी में बदल जाता है। ये गीता ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं। कल हम आगे देखेंगे प्रथम अध्याय से कि विषाद कहां से शुरू होता है और कौन से विषाद की बात की गई है, कौन सा मोह जागृत हो गया अर्जुन का। अगर कहा जाए, अक्सर मनुष्य यही समझते हैं कि जब भगवान उसका रथ बीच में ले गए तो जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने चाचा मामा काका सबको देखा तो उसका मोह जागृत हो गया। सोचने की बात यह है कि जिसने बचपन से लेकर के पांडवों के साथ अन्याय ही किया हो, क्या उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? भीष्म पितामह व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे थे, द्रोणाचार्य बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो पांडवों के साथ अन्याय होते समय कुछ बोल न सके, ऐसे के प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? आपके साथ अगर कोई बचपन से अन्याय करता रहा, उसके प्रति आपको कभी मोह जागृत होगा? तो किस मोह की बात की गई है, किस मोह के जागृत होने की बात की गई है, विषाद किस मोह के कारण उसके मन के अंदर उत्पन्न हुआ, उसको कल बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले अध्याय से उस बात को देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। तो कल सुबह का जो सत्र होगा उसमें भी देखेंगे, और उसके बाद वाला जो सेशन है जो गीता का कंटिन्यूएशन में है उसको भी हम सभी देखेंगे। ओम शांति।